पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरवे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशु देवी प्रणमामि हरि कृष्ण हा देविका को हर गद गद याद वाचा जाचे निपत्त दंडवत बुद्ध भटारती अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणी गणनम विधि अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दे वरम जाडं जागुदरुचि सांविदधतं पट्टं वरस्य बिंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधा स्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायें दामो भक्त्या विहीना पराध लक्षे कृत्वाश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्नै अपायन्मानन भिक्षुमन्दं कृपाम्बुधिर्य परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुनाशय श्रीचैतन्यमनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तुष्य तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञानराधे तं नयमां चरणान्तिके बृहत् भगवतामृतम् परसों कल हम लोग हंताय मत रबला हरिदास वरीय श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने की। गोपियां कह रही हैं कि भगवान के यदि कोई विपरीत हो विमुख हो तो उसे बड़ा दुख होगा। भगवान का के विमुख होने में ही जितने कष्ट इत्यादि हैं भगवान के विमुख होने से, उसे संसार में कोटि कोटि बार जन्म लेना पड़ा और किसी जन्म जन्मांतर में वो सुखी नहीं हुआ। जीव भगवान का अंश है, वो भगवान का स्वरूपत ही दास है, सेवक है, प्रभु उसके उपास्य। इस भाव को छोड़ना ही विमुखता है। मैं संसार का भोक्ता हूँ, सुख का मालिक मैं हूँ, घर का मालिक मैं हूँ, सबका मालिक मैं हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ बनी है, मेरे उपभोग के लिए, यही माया है, विमुखता है। जी इधर गोपियाँ गोपियों के मध्य से कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, कृष्ण को वो खोज रही है। कृष्ण तो उनसे कहीं नहीं दूर हैं, किंतु हम लोग उनसे पृथक हो गए हैं। हम लोगों को यदि खोजना है और भगवान को पाना है तो कृष्ण उनकी जैसी उत्कंठा यदि किसी को हो तो भगवान मिल सकते हैं। बिना वैसी उत्कंठा के भाई भगवान का मिलना नहीं। यदि किसी प्रकार से नारद इत्यादि को बीच में दर्शन भी उन्होंने दे दिए तो सब समय के लिए वो नहीं देख सका, छिप गए उत्कंठा बढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी उन्होंने अपने आप भगवान ने कहा है कि तुम लोगों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए मैं कहीं दूर नहीं था, केवल छिप गया। तुम्हारी उत्कंठा कैसी है, जब तक जगत के लोग नहीं जानेंगे तब तक तुम जगत के कोई भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकेगा। ये सब पहले जाने की उत्कंठा क्या चीज होती है। एक गोपियां, गोपियों की इतनी कृष्ण के प्रति उत्कंठा हो रही है कि इसका कोटि भाग का एक भाग भी हम में उत्कंठा जग जाए। तो हम लोग साधन भजन में कृष्ण को खोजने के लिए तत्पर हो, किंतु ये उत्कंठा उदित होगी कहां से, यदि गुरु और वैष्णव, पहले वैष्णव लोग इसके बाद में गुरु, पहले गुरु पहले नहीं मिलेगा, पहले ही भगवान नहीं मिलेंगे गुरु के माध्यम से, गुरु भी ऐसे नहीं मिलेगा वैष्णव के माध्यम से, पहले वैसे वैष्णव भी नहीं मिलेंगे, पहले मध्यम अधिकारी वैष्णव लेंगे वो भी आगे नहीं मिले, कनिष्ठ अधिकारी मिलेंगे, वो कहेंगे हमारे गुरु जी के पास में चलेगा, तुम जिस चीज को खोज रहे हैं हमारे गुरु जी बतला सकते हैं, वो तुमको दिख रहा है। तो वो वैष्णव के पास मिले, वैष्णव लोग फिर गुरु के पास में ले जाएंगे, गुरु फिर भगवान के पास में, ये पद्धति है क्रिया पद्धति। पहले उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठा कैसे आएगी, कृष्ण ही कुछ ऐसे रूप धारण किए हुए हैं, श्रीमती राधिका जी ऐसे कुछ रूप धारण किए हुए हैं जो बद्ध जीवों के लिए भी सहज ही प्राप्त हैं। कृष्ण जीवों को अपने तरफ लाने के लिए, सुगम बनाने के लिए सालग्राम बन गए, सबके लिए सुलभ है ना, सब सुन। उनकी प्रिया जी बन गई तुलसी, बिना तुलसी के सालग्राम की सेवा नहीं होगी, इसलिए तुलसी जी भी सहज हो गई और सालग्राम के रूप में वो भी हो गए। गिरिराज गोवर्धन के रूप में जगत में उनकी प्रिया जी हो गई जमुना जी। देखिए भगवान कितने बड़े दयालु हैं, जिसे अपने पाने के लिए अपने आप सब व्यवस्था कर रहे हैं। गिरिराज जी हैं सबके लिए सुलभ, अंततः जो कि कुछ चाहता है वो ये नहीं कहते हैं कि केवल मैं कृष्ण प्रेम दूंगा, कहते हैं कि तुम लोगों के अंदर में जो कुछ मांगने की अभिलाषा हमारे पास में चले आओ, पुत्र चाहिए मैं पुत्र दे दूंगा, धन चाहिए धन दे दूंगा। ये क्या चीज है, लोगों को पकड़ने का फंदा है। वो यदि ये कहते हमारे पास जो आएगा उसको कृष्ण का प्रेम देंगे, तब जगत के लोग इने गिने केवल वितरागी जो संत हैं वही जाते, और उन्होंने ऐलान कर दिया तुमको पुत्र चाहिए धन चाहिए, लड़की के विवाह चाहिए लड़के का विवाह चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए हम तुमको दे देंगे। इसलिए सब लोग वहाँ आते गोवर्धन के पास और उनसे मांगते हैं और गोवर्धन उनको दे देते हैं। किंतु ऐसी कुछ गोवर्धन जी उसके अंदर में कृपा करते हैं, उनके पास एक बार जो चला गया वो धीरे 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 पहले हाथ की अंगुली ये पकड़ी, फिर क्या किया और पूरी अंगुली, फिर हाथ पकड़ लिया और इसके बाद में सब ग्रास कर, ठीक ऐसे ही आप लोग रेल में चढ़ेंगे तो देखेंगे बड़ी भीड़ है, तो धीरे धीरे सीट के निकट में अग्रसर हो जाएगी, उस पर एक अपना हाथ रख दे, फिर हाथ को फैलाते जाइए, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा इतना सा बैठ जाए, फिर धीरे धीरे घसकते जाइए। वो घस करने की जरूरत है रेल में, जब ऐसे ऐसे होगा ना अपने आप जगह, फिर धीरे 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 पूरी जगह हो जाएगी। ऐसे गिरिराज जी और भक्त लोग गुरु वैष्णव ऐसे दयालु होते हैं, धीरे धीरे कैसे जीव को ले जाया जाता है। गोपियां सोच रही हैं कृष्ण से हमारा वियोग हो गया है, कृष्ण कैसे मिलेंगे यदि गिरिराज जी की कृपा हो जाए, वैष्णव की कृपा। वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर, उद्धव और गिरिराज, और उसमें भी गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ। उद्धव के जाने से और गोवर्धन उनके यहाँ युधिष्ठिर के जाने से काम नहीं बनेगा, हम जो चीज चाहती हैं वो लोग नहीं दे सकते, बस गिरिराज ही दे सकते, इसलिए गिरिराज जी से प्राप्त। इसी तरह से हम लोगों को यदि भगवान की सचमुच में आवश्यकता है तो ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, और उत्कंठा होने के लिए उत्कंठा होने पर तब फिर वैष्णव से पूछो कृष्ण कैसे मिलेंगे, हम कैसे सब दुखों से पार कर कृष्ण को पा सकते हैं, ये इस चीज को जानने के लिए गुरु की जरूरत। संसारी किसी वस्तु को पाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप गुरु मिल जाते हैं, वैसा हो जाता है, किंतु परमार्थ के विषय में परमार्थविद जो गुरु और वैष्णव है वही केवल बता सकते हैं। गिरिराज जी कृपा कर देंगे, जमुना जी कृपा कर देंगे, वृंदावन कर देंगे, मथुरा देवी भी कृपा कर देंगे, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। गोपियां न तो हिरणों में वो भाव है न किसी में भाव है, ये प्रेमवती गोपियों में सब भाव है, और अपने भाव नेत्र से कृष्ण के वियोग में विप्रलम्ब रूप से विरह में सब में वो देख रहे हैं। यत्री उत्तम महाभागवतों का लक्षण क्या है वो उसमें बतलाया गया है। पहले कनिष्ठ भक्तों का उदाहरण दिया गया, कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, शिव विग्रह में उपास्य बुद्धि रख करके उनकी पूजा करते हैं, पानी में तीर्थ बुद्धि, प्रस्तर में शिला में अर्चा बुद्धि, और पाद तीर्थ चरणामृत में पानी में चरणामृत, ये भावना करते हैं। किंतु यदि जीवों के हृदय में जो प्रभु विराजमान हो रहे हैं उनके प्रति कोई भी भाव नहीं रखते तो क्या है वो? गोखरह स एव गो, गो माने चतुष पाए जो जानवर हैं, उन जानवरों में भी खर गधा इनमें भी क्या बतलाया सब जगह तीर्थों में
वो सत्व बुद्धि पूर्ण के तीर्थ,
ये शरीर में कुनक में आत्मबुद्धि रखता है, अर्थात शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला व्यक्ति, सर्वत्र तीर्थों में भगवत बुद्धि या कुछ ऐसा रखता है, किंतु भगवत भक्त में कोई न तज्जनेषु माने भक्तों के लिए उसके हृदय में कोई आदर नहीं है, वैष्णवों के प्रति आदर नहीं। गुरु में भी कैसी बुद्धि, मर्त्य बुद्धि रखने वाला जी, गुरु जी सब कुछ नहीं जानते हैं, हमसे थोड़ा सा अधिक ये संसार की बातें जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते, इसलिए सब विषय में परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रखने वाला भगवत बुद्धि नहीं रखता तो वो पशुओं में भी गधा के समान है, ऐसे लोगों का संग छोड़ना चाहिए। इसलिए गोपियों ने उसका कनिष्ठ अधिकारी का ये वो कभी कभी छोड़ देगा भजन, कुछ दिन भजन करेगा, और वैसे ही उसकी बुद्धि रही है, इसलिए कुछ दिन होने के बाद में उसका भजन कुछ शिथिल हो जाएगा, जो चीज चाहेगा वो संसारी को वो देंगे नहीं, क्यों तो वो चिन्मय वस्तु हैं, इसलिए उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वहां से भ्रष्ट हो जाता है। मध्यम अधिकारी का ये लक्षण बतलाया, भगवान के प्रति प्रेम और संतों के प्रति, भक्तों के प्रति मैत्री, और अपने से जो अनुगत हैं, जिनको श्रद्धा है, उनके ऊपर में दया या कृपा, और जो भगवत विरोधी व्यक्ति हैं, विमुख हैं, उनकी उपेक्षा, ये मध्यम भक्तों का लक्षण है। कृपा तो सब पर करना चाहते हैं, ये सब पर प्रेम नहीं होगा। जीवों के प्रति प्रेम करना ये अन्याय है, नहीं कर सकते। सांप के ऊपर में, बाघ के ऊपर में आप यदि प्रेम करने जाए तो आपको खा जाएगा, वो प्रेम नहीं करेगा। इसलिए जैसा योग्य है भगवान के प्रति प्रेम हो, और वैष्णव के प्रति मैत्री भाव। ये मैत्री भाव ही तीन प्रकार का, जो उत्तम हमसे है सेवायुक्त मैत्री, बराबरी के जो मध्यम है उनके प्रति मैत्री, और अपने से जो थोड़े से नीचे हैं उनके प्रति मैत्री किंतु कृपायुक्त मैत्री, ये तीन प्रकार। और विमुखों को अवज्ञा, ये मध्यम अधिकारी का। और उत्तम अधिकारी का है जो जीवों में अपने जैसा भाव देखते हैं, प्रत्येक जीवों में अपने प्रभु को देखते हैं, और प्रभु के प्रति इसका भी वैसा ही भाव है जैसा मेरा भाव। प्रहलाद महाराज जी देखेंगे कि हमारे जो भगवान हैं आराध्य, इनके हृदय में हैं, और मैं जैसे इनका शांत रस से या दास्य भाव से भगवान का जो भजन करता हूँ, ये भी जरूर सभी करते हैं। पेड़ भी वैसा ही कर रहे हैं, वृक्ष भी वही कर रहे हैं, सब लोग वैसा ही कर, प्रत्येक जीव ही ऐसा भजन करता है। और भगवान के अंदर में देखेंगे प्रत्येक जीवों के भाव, हमारे प्रति जैसा भगवान का भाव है ऐसे उनका भी जीवों के प्रति ऐसा भाव। ये उत्तम अधिकारी देखें। ये गोपियां को यदि उत्तम भक्त में भी ले लो तो देखो कैसा है। अपना भाव कभी गिरिराज में आरोप कर रही हैं, कभी हिरणियों में कर रही हैं, कभी नदियों में कर रही हैं, कभी आकाश के बादलों में कर रही हैं, जैसा अपने प्रभु को देख रही है, कृष्ण को सर्वत्र, और देख रहे हैं कि ये कृष्ण को वो ऐसे ही प्यारी है, ये कृष्ण को वैसा ही प्यार करता है। इसलिए उत्तम अधिकारी सदैव ये देखता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं विश्व में जो भगवान का भजन नहीं करता और हमारे भाव से ही करता है, वैसा देखता है, इसलिए वो उत्तम अधिकारी। सचमुच में बात ऐसी भी, वो झूठा नहीं, कल्पना नहीं करते, वो ऐसा देखते हैं जब किसी किसी न किसी रूप में, अन्य व्यतिरेक रूप में वो सभी लोग भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, प्राणी मात्र वो है ना। ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ। सभी लोग भगवान के भजन में ही लगे हुए वो देखते, किसी को ये नहीं देखते हैं कि ये भगवान के विमुख। गोपियां देख रही हैं हम कृष्ण से जैसे स्नेह करती हैं, प्यार करती हैं, समस्त जितने तरु लता वृक्ष पहाड़ पर्वत नदी नाले जो कुछ हैं सभी सचेतन हैं और सभी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। नदियां ये गोपियां गिरिराज में जाएंगी ऐसा सोचा, बहाना बने स्नान करने के लिए जा रहे, पासी में हरदेव जी का मंदिर होगा उसमें दर्शन करें, किसी को इसमें इतराज नहीं होगा, हमारे घर वालों को भी बहाना बना देंगे, जैसे हम गिरिराज का मानसिक गंगा में स्नान करके हरदेव का दर्शन, और पासी में कृष्ण गोचारण कर रहे हैं बस उनका दर्शन हो जाए। किंतु जब भाव उसका थोड़ा सा कम गया तो जब देखा तो न तो गिरिराज गोवर्धन न कुछ, ऐसा कौन उत्तम अधिकारी जो है भावपूर्वक जब चिंतन करते हैं लीला में अष्टकाली लीलाओं तो ऐसे ही करते हैं, भाव आंखें बंद हैं, हरिनाम करते 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 वो दृश्य सामने आ गया, बस एकदम तन्मय होकर के तदात्म हो गए और चिंता करने लगे, मैं गोवर्धन में हूँ ऐसी सेवा कर रहा हूँ। फिर जब तदात्म कम गया तो देखेंगे जो कुछ नहीं, तब हाय हाय करेंगे, यहाँ पर गोपियाँ जब थोड़ा सा कुछ कम हुआ आवे, तब दूसरी सखियाँ या वही सखियाँ फिर कह रही हैं, दृष्ट्वा तपे ब्रज परसून सहराम गोपै संचारयन् तम मनुवेणु मुदीरयन्तम् प्रेम प्रबिद्ध उदित कुसुमावली भी सख्युर्वधात सपुषा बपुषाम्बुदयात पत्रम्। वो कुछ आगे बढ़ी, ये घर में बैठी हुई चल रही है गोपियां, घर में बैठी हुई है परस्पर आवाज कर रही, भाव कुछ कम हुआ फिर भाव जब बढ़ा कर वो देख रही है। देखो तो दृष्टार्थ पे कृष्ण गोचारण करते करते वन में प्रवेश किए हैं, उनके साथ में ब्रज पशुन सह राम गोपई, उनके साथ में राम भी हैं, बलदेव भी हैं और गोप कुंज भी हैं। संचार यंत्र भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते 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 देखा कि कृष्ण गौओं को चरा रहे हैं, दोपहर का समय है, चराते रहे थे, गौएं कुछ चली गई, वो तो घास चाहिए उनको, वृक्षों की छाया में वो घास है या कहीं धूप में घास है, कहाँ घास है ये उनको नहीं देखना, घास चाहिए हरी घास, कहीं एक भी दिख जाए दो भी घास, कुछ पत्ते मिल गए बस गाय ललच करके उधर में चली जाए। अब दोपहर का समय था, सब शिलाएं गर्म हो रही, बालू रेती मिट्टी नीचे की गर्म हो रही, पहले जो गोवर्धन में गए होंगे परिक्रमा में, पहले वहां पर बालू की राशि रचा होता था, आदमी उस पर चलते थे, आजकल तो वो सड़क बना दी, तो बालू तप्त हो जाती है गर्मी के दिनों में। कृष्ण ने देखा जैसे गायें घास चरने के लिए आगे बढ़ गई और शिलाएं तप्त हो गई हैं, तो कृष्ण ने सोचा गाय भी कष्ट पा रहे हैं, हमारे सखा भी कष्ट पा रहे हैं, वेणुम उदीरयन्तम् मल्लाराग गाया, मल्लाराग किसको कहते हैं, मेघ जिससे कि आ जाते हैं और मेघ पानी बरसाने लगते हैं, भारतवर्ष में इन सब रागों का अनुसंधान हुआ था, अभी तानसेन और बिजू बावरा हरिदास जी थे ये सब तक ये राग रागनिया कुछ थी, हम लोगों में नरोत्तम ठाकुर तक ये राग रागनिया कुछ थी, इसके बाद में वो सब राग रागनिया केवल नाम मात्र की रह गई, ऐसे राग आलापते थे वीणा के ऊपर में या इसके ऊपर, सचमुच में वो राग रूप रख एकदम लेकर के वहां पर प्रकट हो जाता था, कभी कभी वन में आग लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, हमने सुना है पढ़ा है ये हरिदास जी के तानसेन और बैजू बावरा दो शिष्य थे, बैजू बावरा वो कुछ अखड़ टाइप का था, बैजू बावरा अखड़ टाइप का फकीर एकदम, और ये राजाश्रय ले लिए तानसेन, इसलिए इनको कुछ जान गए लोग, और ये अपना नाम ताम कुछ भी नहीं चाहते थे, उनको तो राग से आवश्यकता है, तो बैजू बावरा सुना कि तान से वहां दिल्ली में उस समय कोई गान गाता हुआ सड़कों पर नहीं जा सकता था, यदि गाया तो उसको पकड़ करके तानसेन का पास ले जाते और उसके सामने कीर्तन करने में जब परास्त होते तो उनको दंड दिलवाता, इसके लिए कोई नहीं जाता था। बैजू बावरा सुना और दिल्ली गया, सड़क पर ऐसे ही गाने लगा, लोगों की भीड़ हो जाती, तानसेन को बादशाह अकबर को खबर मैंने कहा जी कौन ऐसा गा रहा है जो सब लोग भीड़ बड़ी टूट रही है, तो तानसेन की बदनामी होगी, तो उन्होंने उनको बुलाया आपको प्रतियोगिता में आना पड़ेगा और नहीं तो दिल्ली में नहीं गा सकते, आज प्रतियोगिता है तो ठीक है, प्रतियोगिता कहाँ होगी? उन्होंने कहा राज्यसभा में हो जाए। उन्होंने कहा जी निर्णय कौन लेगा, ये कौन सुंदर गाया, अच्छा मीठा गाया, तो महाराज लेंगे, रानी सब, मैं इन पर विश्वास नहीं करता, मैं चाहता कि जंगली पशु और पक्षी ये निर्णय दें। वन की हिरणे और जैव जंतु जितने वो निर्णय दे, वो मुझको मान्य होगा, आप लोगों का नहीं। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या? वही वन में हम करेंगे प्रतियोगिता होगी और देखेंगे ये पशु पक्षी किसका कीर्तन सुनने के लिए प्रसन्न होकर के आ जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है चलो, वन जंगल में सब सभासद लोग गए और वहां पर दोनों ने पांच सेन ने पहले किया, इसके बाद में बैजू बावरा, बैजू बावरा बिना लेकर के जब गाने लगे तो दल के दल हिरणे और पशु सब वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने एक माला पहले से रखी थी, वो माला लेकर के फूलों का हार एक हिरणी के गले में डाल और गाना बंद किया, गाते रहे और तब तक एक हाथ से उठाए उसको सुध बुध नहीं रही हिरण को, और उन्होंने गले में एक हाथ से उसकी माला डाल, इसके बाद में आलापना बंद कर दिया, और इसके बाद में जहां बंद हुआ तहां जो उसे हिरणी भागती। उन्होंने कहा जैसे मैं इनको कहूं हमसे श्रेष्ठ हैं, यदि वो हमारी माला लौटा करके दे दे, उस हरणी को बुला करके माला हमारी ले ले, फिर एक ऐसा कहीं होता है। उन्होंने फिर बिना उठाया उन्होंने तांसेन ने और अलागर लगाते लगाते पसीने से तरबर हो गए, किंतु हिरण नहीं आए और माला नहीं लौटी। कभी ये पशु हैं ये, क्या एक बार आ गए फिर आ गए, अजय ठीक बस फिर लिया, और इस बार इतना और सुर से गाया कि और भी हिरणे और वो भी एकदम एक तक देखते हुए आ करके एकदम सहारे आ गए, और उन्होंने गाते गाते एक हाथ से उसकी माला उतार ली, और इसके बाद में जब गान बंद किया तो सब ऐसे लोग कीर्तन करने वाले थे, मधुर पद गाने वाले। वर्षा का ही तो वर्षा हो गई, आग कही तो आग लग गई, ऐसे ये सब गान होते थे। तो कृष्ण ने मधुर बंसी बजाई मोहन बेनु, मोहन बेनु मैंने सबको मोहित कर दिया, जब ही जंगल में प्रवेश किया मेघों ने देखा जी हमारा सखा आ गया, सखा आ गया, क्यों सखा ली, मित्रता क्यों हुई, वो भी श्याम रंग का हम भी श्याम रंग के, दोनों हम लोग एक से हैं, इसलिए उनके प्रति रोज रोज आते हैं बने जंगलों में, अब धीरे धीरे मित्रता हो गई, ये सोच रही है गोपियां, उसमें का किसी से मित्रता है, किंतु ऐसा सोच रही है। अब कृष्ण ने जब मंत्र गति से जबकि बजाई बेनु, अब देखिए जी हमारा सखा आ गया, तो इस सखा का कुछ आदर हमें करना चाहिए। अब देखा जैसे गायें जहां पर खूब धूप कड़ी है और ये गर्म हो गए हैं पत्थर और मिट्टी, अब जहां तहां खड़े होकर के गायें सुनने लग गई कृष्ण की बेन, और जितने सखा थे वो जहां तहां खड़े हो गए सुनने लग गए, सब लोगों की सुध बुध एकदम। देखा जी हमारा ये सखा धूप में खड़ा हुआ बंसी वादन कर रहा है, अब इसके सखाओं के लिए और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, बस अपने आप दिष्टा तपे बज पशुन सह राम गोपई संचार यंतम अनुवेणु मुदीर यंतम, साथ ही साथ में उदित हो गया, मैं कहीं नहीं था कि मल्लार राग कृष्ण ने गाया था, ये अपने सखाओं के इन कृष्ण के आह्वान से मुरली की ध्वनि से सब एकदम दल के दल मेघ वहां पर उपस्थित हो, और आकर के केवल कृष्ण पर नहीं अपने को अच्छा भी किया, जहां जहां गाये हैं जहां जहां बछड़े हैं या जहां जहां गोप लोग हैं सबके ऊपर में उस सेवा करने की भावना से मिताली निभाने के लिए सबके ऊपर में अपने तन से ढक लिया। तन से ढकने से हुआ क्या? प्रेम प्रवृद्ध और प्रेम बढ़ा। ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके आंखों में आंसू आ गए और आंखों से आंसू हिमकण जैसे, गर्मी का दिन था, हिमकण जैसे ऊपर से गिरने लगे। उदिता कुसुमावली थी, उनसे जो नेत्र से जो पढ़ रहे हैं वो कुसुम के समान कुसुमावली फूलों जैसे और खूब सुंदर घन जुटकर वो गिरने लगी। बूंदी बाधा होने लगी, बाधा बूंदी होने लगी। सख्य बधा सब अपुसाव आत्मपत्र माने छाता, अपने शरीर को ही छाता बना दिया। किंतु कुछ छाते ऐसे होते हैं जरा वो छेद वाले, कपड़ों में कपड़ा झीना होता है, तो जब खूब घना हुआ कपड़ा ना और उसको पॉलिश अधिक हुई तो जितने पानी है सब वो बाहर में जाएगा, और इसमें नहीं तो खूब धीरे धीरे छोटी छोटी हिम कण जैसे उसी के अंदर से थोड़ा थोड़ा। वैसे इनके शरीर के अंगों से अश्रु कुछ कण हिम के रूप में, फूल के रूप में बरसने लग गए। शक्र बधा तो सब कुशा मुदा। ओ क्यों कर रहे हैं? उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कर रहे हैं। देखो तो ये मेघ कितने सौभाग्यवान है, कितने सौभाग्यवान ये मेघ। हम लोग मेघों की बराबरी भी नहीं कर, हम कृष्ण की तनिक भी सेवा नहीं कर सकते। हमारे जैसे दुर्भागा और कोई नहीं है। साधक भी ऐसा ही समझता है, वो समझते हैं कि सभी लोग भगवान की सेवा करते हैं, केवल मैं नहीं करता। यदि ऐसा साधक होगा तो वो साधन करके आगे बढ़ेगा, और नहीं तो केवल दूसरों का दोष देखेगा ना, तो दूसरों का सब दोष उसके अंदर में आ जाएगा। इसलिए किसी का दोष न देख करके भक्त लोग उसके गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। ये देखते हैं कि सभी लोग सेवा कर, मैं नहीं करता। इसलिए ये कह रहे हैं, ये तो इसके ऊपर में छत्र छाया डाल देते, हम तो उनका संग भी नहीं कर सकती, न कुछ कर सकते, कोई सेवा के योग्य ही नहीं है। यहां पर राम ब्रज पशु न सह राम गोपई, राम गोपई इसलिए कहा, राम का नाम लिया। राम माने बलदेव मत समझो, एक तो अर्थ है जो राम के साथ में गए, किंतु ये राम का बहाना बना करके राम और कृष्ण में से कृष्ण के लिए, अथवा राम जो कृष्ण रमण करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, उनके लिए राम शब्द का प्रयोग हुआ है। वेणुगुत में इसके आगे चलते हैं। नद्यस्त तदात पधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजाई मुरारे गृणंति पाद जुगलम कमलोपहार। ये सब उत्तम भक्तों के भाव हैं, उत्तम भक्त में भी नहीं आएंगे तो गोपियों के भाव। किंतु भागवत ने दिया क्यों? साधक भी जिसको गोपियों के भावों के प्रति लोभ है, उनके अनुगमन में ऐसे ही भावों से उनका स्मरण करेंगे, और स्मरण करते करते वो भाव कभी किसी दिन किसी जन्म में आ सकते हैं। ये गोपियों के इतने सुंदर कंठाजुक्त भाव थे। गोपियां घर में बैठे बैठे भाव का एक एक आया और फिर दूसरा भाव और ऊपर उठ करके उसको दबा करके फिर और भाव आया। एक भाव संधि, एक भाव साबल्य, यहाँ पर भाव साबल्य है। एक भाव को दबा करके फिर दूसरा चढ़ जाता है। नद्यस तदा तब तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजाई मुरारे गृणंति पाद जुगलम कमलोपहार। साधारण अर्थ ये कि गोपियां नदी के तरफ में देख रही, जमुना नदी है या मानसी गंगा है या और कोई नदी है जो ब्रज की रहने वाली, मुकुंद के गीत को सुन करके कर रही है सखियां, हे सखी, मुकुंद की बेणी ध्वनि को सुन करके और तो क्या नदियां भी अपने हजारों हजारों हाथों से लंबी भुजाओं से कमल का उपहार लेकर के कृष्ण के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। और की तो बात है, ऐसे कृष्ण मोहन है। ये सब नदियों का बहना बंद हो जाता है, उनकी तरंगे टूट जाती हैं, उनकी धारा जो है ना रुद्ध हो जाती है, और उससे क्या होता है, तरंगों के रुक जाने से ऊपर से तो पानी आता जाएगा और वो पानी स्फीत होकर के बढ़ता जाएगा, अब बढ़ने से उसमें अब पानी उधर में जाएगा नहीं, उधर से आ रहा है धीरे धीरे, नीचे का जो पानी है वो स्तब्ध हो गया, वो भी आगे नहीं जा रहा, अब इधर से जाने का अवकाश नहीं, बस वहां पर घूमने लगता है। ये है भ्रमर। भ्रमर क्या है, कहते हैं मनोभाव। मनोभाव माने होता है काम, काम माने प्रेम। नदी के प्रति, नदी का कृष्ण के प्रति अनुराग है, ये अपने आप बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके धारारुद्ध होकर के काम के रूप में मानो अनुराग से उस पुष्प को लेकर के अपनी लहर रूपी भुजाओं से कृष्ण के चरणों में। अब इसकी विशेष व्याख्या में ये बतला रहे हैं, जमुना थे सखियों, जमुना और मानस गंगा इत्यादि जो ब्रज की नदियां हैं, इनके पति कौन हैं, समुद्र, शरद पति, सब नदियों के पति, ये सब नदियां समुद्र की तरफ नहीं जाती, किंतु ब्रज की कोई नदी सहज ही नहीं जाती मानस गंगा इत्यादि, उसका कारण क्या है ये बतला रहे हैं। विशेष करके सब नदियों में श्रेष्ठ जो भगवत प्रियतमा कालिंदी जी हैं, कालिंदी माने कालिंद पर्वत से निकलने वाले, अथवा कृष्ण के अंगरागों से जिनका पानी ऐसा रंग हो गया है श्याम रंग, अथवा गोपियों के अंजन से राग से वो उसका पानी ऐसा श्यामल रूप धारण कर लिया है, और उन्हीं के लिए, जमुना के लिए ही सब ब्रज की नदियों की उपमा दी गई। कृष्ण ने बंसी वादन किया और उसको सावधानी से अपने कर्णों के माध्यम से हृदय में ले गई उस ध्वनि को, कौन, यमुना आदि नदियों के लिए, नद्यास्तदा तदुपधार्य, उपधार्य माने धारण करके, अतः तो अपने हृदय में धारण करके पधार्य, मुकुंद गीत बंसी गीत आवर्त लक्षित तत्क्षणात् उसमें भ्रमर पैदा हो गया, और वो पानी नीचे जाना नहीं चाहता, सब ऊपर उतर के आ रहा, गोल घूमने लगा। इसलिए भग्न तरंग हो, काम के द्वारा भग्न हो, अथवा कमलों पहारा है इसमें, कमलों पहारा, हाथ में कमल का उपहार लेकर अपनी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरणों में उपहार के रूप में भेंट की। यहाँ पर कमल उपहार कमलोपहार, अथवा कमला उपहार कमलोपहार, दो संधि, एक कमल उपहार, एक कमला लक्ष्मी, लक्ष्मी माने शोभा। नदी की शोभा क्या है? कमल है। उस समय जमुना में कमल होते थे, उस शोभा को उन्होंने लेकर के कृष्ण के चरणों में उपहार के रूप में दिया। उसमें जो तरंगे आ रही हैं उनको लंबे लंबे हाथ बतलाए, एक दो नहीं लाखों लाखों तरंगों से कृष्ण के चरणों पर जल ढाल दिया ना। किस लिए? उनके चरणों को पकड़ लिया, जाने नहीं देंगे यहां से, आप जो इधर उधर चले जाएंगे। चरण पकड़ लिया, सत्याग्रह कर लिया तो आदमी नहीं जाएगा कहीं। इस तरह से नदी मानो कह रही है अपने तरंगों रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण को चरणों को आच्छादित कर लिया, पकड़ लिया और उस पर अपने हृदय को रख दिया। एक तो कमल दिया ही उपहार के रूप में उसकी समस्त शोभाएं, और अपने यहां से ऐसे पकड़ लिया चरण, चारों तरफ से वो हो जाता है ना पानी, तो पानी रूपी भुजाओं से कृष्ण के चरणों को चारों तरफ से पकड़ लिया। आप अब कहीं नहीं जा सकते, इतना जो कष्ट दिया अब हम जाने नहीं दे। इस भाव से गोपियां कह रही हैं मनी मन में, यह हो हम लोग पैसा नहीं कर सकते, कृष्ण के चरणों को हम पकड़ने और उनको जाने न दें बड़ी भारी लोक लज्जा, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लेती है नदी। कमल का उपहार दे रही है। उपहार माने क्या होता है? कमल मानो ये कमल जैसे सुगंध युक्त है, कुछ अनुराग रंग में रंगा हुआ है, ऐसा ही हमारा हृदय है। मैं अपने हृदय को निकाल करके आपको अर्पण कर रही हूं। हार जो है ना, हार जैसे होता है, प्रिय होता है, ऐसे अपने इन जो कमल के जो फूल हैं उनका हार बनाकर और आपके चरणों में हम अपने को भी समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को भी गुरु वैष्णव के चरण में पहले यहीं से आरंभ करें शरणागति, और धीरे धीरे आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में भी। कहते हैं कि ये जा रही थी यमुना जी समुद्र की तरफ में, या मानसी गंगा, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर के बीच में रह गई, अटक गई बंसी की ध्वनि से। गोपियां कह रही है इस विषय में हमारा उनका साम्य है, हमारे भी पति हैं, हम उन्हें छोड़कर के कृष्ण से मिलना चाहती हैं। ये हमारी सखियां हैं ये नदियां, और हमको भी इंगित कर रही हैं तुम हमारे जैसा नहीं हो सकती। जिस प्रकार से कृष्ण की बंसी से हम आकृष्ट होकर के अपने सबको छोड़ करके और कृष्ण से हम मिलित हो रही हैं, अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में रख दिया, तुम इतना साहस नहीं रख सकती, इतना लोक लज्जा से डरती है, किंतु हम ऐसी दुर्भाग्यनी हैं जो इनकी इस शिक्षा को हम नहीं ले रही हैं, हम उनके चरणों में अपने को समर्पित नहीं कर रही। ये यमुना जी और नदियां समुद्र के चारों में जाना बंद कर दिया और वहीं पर रुक गई, और भ्रमर के छल से चारों तरफ वहीं पर घूमने लग गई।